आप अपनी जिंदगी में कोई तब्दीली लाना कितना पसंद करेंगे?
आपकी हर तमन्ना पूरी हो सकती है सिवाय बंदिशों से छुटकारा पाने के। इसके लिए आपको उस वक्त तक सही सोचना और सही बोलना पड़ेगा जब तक खुदा की कुर्बत हासिल ना हो जाए। आप जब तक ना चाहें खुदा आपकी मदद नहीं करेगा।
इसके बाद लुत्फ उठाएं रोजमर्रा की जिंदगी का।
लुत्फ उठाएं रोजमर्रा की जिंदगी का। मैं खुश आमदीद, यहाँ आने का शुक्रिया। आज भी हम दिमाग और मजबूत फिक्र की अहमियत पर इजहार ख्याल करेंगे। मैं मनफी और मजबूत फिक्र वालों को जानती हूँ और वसूख से कह सकती हूँ कि मनफी फिक्र वालों से ज्यादा मजबूत सोच वाले ज्यादा बेहतर होते हैं। कभी मैं अपनी जिंदगी के हर मामले में हर वक्त मनफी तरीके से सोचती थी। मेरी जिंदगी भी वैसी ही हो गई थी, मगर अब मैं कतई मजबूत फिक्र की मालिक हूँ और किसी मनफी सोच वाले की कुर्बत भी पसंद नहीं करती। बराए मेहरबानी तशरीफ रखिए और मेरे तदरीसी सिलसिले बैटलफील्ड ऑफ द माइंड पर एक और पुर असर गुफ्तगू सुनिए। खुदा को ये बात पसंद नहीं कि जब वो आपकी मदद करना चाहता है तो कोई और आपको इस्तेमाल करे, क्योंकि खुदा आपको इनाम व इकराम से नवाजना चाहता है, मगर आपकी बुरी खसलतों की वजह से कुछ नहीं कर सकता। क्या आज कोई ये समझ पा रहा है कि पहले आपको अपनी तकलीफों को बीज की तरह बोना पड़ेगा और फिर खुदा आपकी जिंदगी में बहार लाएगा। इसी बिना पर खुदा हमेशा चाहता है कि हम तकलीफ पहुंचाने वालों को माफ करना सीखें। माफी का मतलब होता है मामले को खुदा के सुपुर्द करना, खुद फैसला करने के बजाय खुदा पर छोड़ देना। ईमान के साथ खुदा के सुपुर्द करने पर वो आपकी जिंदगी में फल देगा। शैतान जब आपसे कहे कि अब कुछ नहीं रहा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है, तो आप उसे जवाब दीजिए, नहीं नहीं, हमें मौका दिया गया है एक नई जिंदगी को ज्यादा बेहतर तरीके से शुरू करने का। आज मैं आपसे पूछती हूं कि आप अपने लिए क्या चाहते हैं? हमें कनाट पसंद होना चाहिए, मगर अपनी मौजूदा जिंदगी पर हमें बिल्कुल टिके नहीं रहना चाहिए। हमेशा हमारी कोई मंजिल, हमारा कोई ख्वाब होना चाहिए। हमेशा दौलत ईमान के साथ हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना नसीब हो। आमीन। मैंने अप्रूवल एडिक्शन नाम की जो किताब लिखी है, उसका शुमार न्यूयॉर्क के मकबूल तरीन किताबों में होता है और वो नंबर 9 पर है। आप जानते हैं, ये एक अहम बात है। मेरी कोई किताब को इतनी मकबूलियत नहीं मिली थी, इसके लिए मैं मशकूर और बहुत खुश थी, लेकिन मैं मुतमईन नहीं हूं। मैं ऐसी किताब लिखना चाहती हूं जो नंबर 1 की फहरिस्त में आए। हमारे टेलीविजन प्रोग्राम की दुनिया के 2/3 हिस्से में धाक है। यह किसी के लिए भी बाई से इत्मीनान हो सकता है, मगर मैं चाहती हूं हमारा प्रोग्राम दुनिया भर में फैले। ये हमारी जिंदगी का मकसद है, इसकी मैं तैयारी करती हूँ। इससे मुझे तहरीक मिलती है, मेरा हौसला बढ़ता है, इससे मुझे मुस्तकबिल पर नजर रखकर कुछ हासिल करने का जज्बा मिलता है। मैं बहुत कुछ की ख्वाहिश करके इसका आधा पाकर भी खुश होऊंगी, बनिस्बत इसके कि रूहानियत के बगैर सब कुछ पालूं। इंसान फानी है। जोसेफ ने ख्वाब देखा था कि उनका कोई बामकसद ख्वाब है जो उनके भाइयों को बिल्कुल पसंद नहीं था। जब आपका भी कोई ख्वाब हो तो यह ना भूलिए कि शैतान आपके ख्वाबों का चोर है। वो हमेशा इस फिराक में रहता है कि आपका ख्वाब चुरा ले। आपकी जिंदगी में ऐसे वाकयात भी हो सकते हैं जब आपके सामने ऐसा मकसद हो जिसकी ना कोई मंजिल हो और ना कोई रहबर। तब आप कहिए कि बेसिमती की बात मत कीजिए, मेरे अंदरून में उस मंजिल का निशान है और हमारे रहबर यीशु मसीह हैं। साबित कदम रहिए और बेहतरी यही है कि रूहुल कुदुस की डोरी पकड़े बजाय इसके कि दुनियावी रास्ते पर चले, क्योंकि दुनियावी रास्ते हमेशा मसले को मुश्किल बना देते हैं। हालेलुया। इब्राहिम एक रहमदिल इंसान थे, उनके साथ फरेब किया गया। उन्होंने अपने भतीजे लॉट की मदद की, उन्हें मवेशी दिए, बहुत सारी चीजें दी, मुनासिब मौका दिया। नतीजतन दोनों बहुत खुशहाल हो गए और उनके मवेशियों की तादाद इतनी हो गई कि उनके चरने के लिए घास कम पड़ गई। उनका साथ रहना मुश्किल हो गया और गडेरियों में चपकली शुरू हो गई। इब्राहिम को झगड़े फसाद के खतरे का अंदाजा था, इसलिए उन्होंने लौत से कहा, मैं हाथ जोड़कर कहता हूं आपस में लड़ाई भिड़ाई की कोई जरूरत नहीं। तुम चुन लो जॉर्डन की वादी का पसंदीदा खिदा अपने लिए और जो बचेगा वो मैं ले लूंगा। ये उनकी नेकी थी। झगड़े के लिए अकड़ने के बजाय उन्होंने इनकिसार बरता। क्यों भला? इसलिए कि उन्होंने सोचा कि वो खुदा के बताए रास्ते पर चलेंगे तो खुदा उन्हें नवाजेगा। हकीकत अमर यह है कि उनके लौट ने वादी जॉर्डन के बेहतरीन खिते पर हक जमाया और बचा खुचा इब्राहिम को दे दिया। तुमने कभी ये महसूस किया कि तुम्हें सबसे अच्छे हिस्से से दस्तवरदार होकर बचे खुचे पर खुद कनायत करनी पड़ी? बताइए कि कभी तुम में कितनों को ऐसा तजुर्बा हुआ, धोखा खाने का एहसास हुआ, किस्सा मुख्तसर उम्र भर दूसरों के दिए पर या भाई या बहन के रहमो करम पर जीना पड़ा हो, या जो भी तय हुआ उस पर जिंदगी गुजारनी पड़ी। जो भी हो, अपने जहन को इस किस्म के ख्यालात से पाक रखिए, या आज की मजलिस के बाद अपने घर जाकर ये कहिए कि मैं गमो गुस्से के जज्बात से छुटकारा पाऊंगा, मैं तलखियों को भुला दूंगा, मैं इंतकामी जज्बे को नहीं पालूंगा, मैं नाराज नहीं होऊंगा, मैं इस किस्म के तमाम नाकिस तर्ज अमल से परहेज करूंगा। मैं समझती हूँ खास रूहें अपना तसल्लुत कायम करने के लिए हमेशा हमारे आस पास मंडलाती रहती हैं, हमारे ऊपर हावी होना चाहती हैं, वो आपके जहन पर कब्जा करना चाहती हैं, वो आपके दिमाग में मनफी ख्यालात भरना चाहती हैं। जानते हैं कैसे? मनफी ख्यालात। बाइबल में कहा गया है कि यीशु मुकद्दस रूह और आग से आपका बपतिस्मा करेंगे। मुकद्दस रूह और आग से आप उन हड़पने वाली बदरूहों का मुकाबला कर सकते हैं। वो लॉट ने जब वादी के सरसब्ज इलाके पर कब्जा कर लिया, तब पैदाइश के 13:14 में है कि लॉट ने जब इब्राहिम को अकेला छोड़ दिया तो उसके बाद वहां इब्राहिम एकदम तन्हा था। लॉट ने सब हथिया लिया था, उनके लिए छोड़ा गया था, वो जरखेज नहीं था। यहां भी अगर कोई इस हाल में पहुंच गए हो तो सुने कि खुदा ने इब्राहिम से क्या कहा। किस्सा तमाम हुआ, अब आप इन चीजों को भूल जाइए। इतने सालों तक आप इन गडेरियों को सुधारने की कोशिश करते रहे, लेकिन नतीजा, आपने इनके साथ हुस्न सुलूक किया और इन्होंने आपका फायदा उठाया। लोग ऐसे ही हैं, किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आप सब